ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरे सफर में एक बात से हमने शुरू किया था कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वही हमारा भाग्य या हमारी डेस्टिनी लिख देते हैं। और आज अगर हम देखें इस पूरी बातचीत को जो हमने किया, पूरी सीरीज में हमने ये बात जान ली है कि हमारा पहले थॉट ये रहता था कि मैं ये शरीर हूं और उसीलिए सारी जो चीजें जुड़ी हुई होती थी वो इस शरीर से जुड़ी रहती थी और हमारा भाग्य हमारी डेस्टिनी लिख देता था ये थॉट। आज हमने उस थॉट को थोड़ा सा बदला, हमने ये जाना कि मैं आत्मा हूं, वो आत्मा जो प्रेम से भरी है, जो शांति स्वरूप है, और हमारा भाग्य एक नए रूप में हमारी डेस्टिनी सामने आई। एक और बात जो इस पूरे सफर में हमारे सामने आई है कि जो कुछ आज मेरे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। इस जन्म में या फिर कार्मिक फिलॉसफी को अगर हम देख रहे हैं तो पिछले कई जन्मों से जो होता आ रहा है, मैं क्यों जिम्मेदार हूं और क्या जो आज मेरे साथ हो रहा है उसे मैं बदल सकती हूं, क्योंकि बदलना भी मेरे ही हाथ से होगा। कैसे हो पाएगा ये सब कुछ, इसी को जानने के लिए इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और हर बार की तरह इस सफर में हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति।
सिस्टर शिवानी, अभी तक जो हमने सफर तय किया, जो आज मैंने कहा भी है अभी, वो सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे सोए हुए को एक जागरण हुआ है, एक अवेकनिंग हुई है और रियलाइजेशन हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक जर्नी की हमने बात की थी, जो पूरा की कर्म का जो एक पूरा एस्पेक्ट था, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैंने मान लिया, एक्सेप्ट है कि जिसकी मैं, जो कुछ हो रहा है मेरे साथ उसके जिम्मेदार मैं खुद हूं। क्या जो मैं आगे चाहती हूं उसको बदल सकती हूं?
जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेवार मैं हूं, इसलिए उसको बदलना भी
मेरे अपने
हाथ में है। अभी तक क्या था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे वजह से नहीं है, वो औरों की वजह से है, वो परिस्थिति की वजह से है, वो कोई मेरे गलत समय मेरा चल रहा है या बैड लक है,
ये मेरा मानना चल रहा
है, ये सब जो बातें थी, तो इट वाज एवरीथिंग व्हिच वाज नॉट इन माय कंट्रोल। मेरे जो सितारे हैं इस टाइम वो ठीक नहीं है, या परमात्मा मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, ये सारे जो बिलीफ सिस्टम्स थे, तो इनकी वजह से मेरी थिंकिंग थी कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके लिए मेरे अलावा बाकी सब जिम्मेवार है।
मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, ये सवाल अब कहीं तंग नहीं कर।
आप अगर मेरे से ठीक तरह से बात नहीं कर रहे हैं, इसके जिम्मेवार आप है, तो इसलिए मैं ट्राई करती रही आपको चेंज करना, और आपको मैं चेंज नहीं कर सकती, तो आई केप्ट ऑन सफरिंग, मेरी भोगना बढ़ती रही, क्यों हो रहा है, आप मुझे तंग करते रहे, मैं परेशान होती रही, एंड दैट प्रोसेस वेंट ऑन। अब समझ में आया, आप मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके जिम्मेवार मैं हूं कि मैंने उस तरह की एनर्जी कभी ना कभी आपको ट्रांसमिट की है, वो मेरे पास वापस आ रही है। नाउ आई कैन चेंज। व्हाई? बिकॉज मुझे समझ में आया कि जो मुझे सबसे मिल रहा है, it is only a return of what I have sent out, so if I'm not liking what I am getting, I just have to change what I am going to send out. जो अगर मैं कहती हूँ मुझे लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मुझे लोगों से प्यार नहीं मिल रहा है, तो मुझे लेना नहीं है, मुझे उनको वो देना है। तो अगर वो हम देंगे तो वो जाकर हिट करके वो ही वापस आएगा।
इनफैक्ट ये भी एक लॉ है, अगर हम देखें तो व्हाटएवर गोज आउट एक्चुअली वी गिव इट बैक।
दैट इज ओनली कार्मिक फिलोसफी, दैट जो आप व्हाटएवर एनर्जी गोज आउट द सेम एनर्जी कम्स बैक। तो जो एनर्जी वापस आ रही है उसको देख के ग्रम्बल करने का तो कोई फायदा
नहीं। एक्चुअली उसको देख के एक बार रियलाइजेशन एकदम से हो जाना चाहिए। मुझे लगता है नाउ इट्स सो क्लियर कि जो एनर्जी हमारे पास वापस आ रही है वो कहीं ना कहीं मैंने ही दी है।
तो अब अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम और उस तरह की एनर्जी भेजते जाएंगे बाहर, तो फिर वो और ज्यादा आती जाएगी हमारे पास। तो इफ आई एम नॉट लाइकिंग द एंगर दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, गिव यू लॉट ऑफ लव, तो समवेयर दैट लव विल गो हिट यू एंड इट विल कम बैक टू मी।
इवन इफ देयर इज अ कार्मिक अकाउंट,
दिस इज ऑल इफ इट इज अ कार्मिक अकाउंट, बिकॉज एवरीथिंग इज अ कार्मिक अकाउंट। कुछ भी तो बिना कार्मिक अकाउंट के हो नहीं रहा है। फर्क क्या है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कई जैसे भाई बहने फोन करके कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन वो मुझे क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं. यू नो, बहुएं कहेंगी इन लॉज क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, कोई हस्बैंड कहते हैं वाइफ क्रिटिसाइज और वाइस वर्सा, या बॉस क्रिटिसाइज करता रहता है. नाउ व्हाट टू डू एट दैट टाइम, कि वो क्रिटिसाइज ही करते जा रहे हैं, एंड ये ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनसे हम छूट नहीं सकते हैं, तो वी आर गोइंग टू लिव विद देम. तो वी should we live with the criticism? Can we change the criticism? Can we accept the criticism? What can I do? The energy जो है वो हमारी तरफ travel कर रही है, आपसे मेरी तरफ energy आ रही है. मेरे पास तीन choices है, या तो उस energy को absorb कर लूं. तो आपने negativity भेजी, मैंने absorb कर ली, क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अंदर ही अंदर घुलते रहे, पिसते रहे अंदर. दूसरा है एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, तो आपने एनर्जी नेगेटिव भेजी, मुझे हिट की और भी ज्यादा फास्ट से आपकी तरफ गई, ये ऐसे है वैसे है व्हाटएवर, सो आपने भेजी, मैंने रिफ्लेक्ट की. तीसरा होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, तो आपने नेगेटिव भेजी, नाउ इफ आई एम पावरफुल आई शुड बी एबल टू ट्रांसफॉर्म इट टू पॉजिटिव.
आई विल वर्क ऑन इट.
यस,
डू आई वर्क ऑन
इट? आई वर्क ऑन इट. हाउ? कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक मुझे अब अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है इट्स बिकॉज ऑफ मी. तो मेरा कुछ पिछला इम्प्रेशन अंदर बना हुआ है, जो जैसे ही मैं आत्मा आपके सामने आती हूँ तो आपके अंदर से वो एनर्जी मेरी तरफ आने शुरू हो जाती है. अब अगर मुझे अपने ऊपर रहम करना है, अपनी भोगना को खत्म करना है, व्हाट लॉट ऑफ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप औरों को यू नो लेट गो करते हैं, या ज्यादा उनके बारे में नहीं सोचते हैं, या उनकी बात पर बहुत ज्यादा परचिंतन नहीं करते हैं, आप उनको नहीं क्षमा कर रहे हैं,
खुद को कर रहे हैं,
आप अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी भोगना को कम कर रहे हैं. अभी हम क्या करते हैं, क्यों बोला क्यों बोला क्यों बोला, तो एवरी दैट थॉट अगेन आई एम क्रिएटिंग दैट इम्प्रेशन, अगेन इट विल गो आउट अगेन. तो वो संस्कार री इन्फोर्स होता जा रहा है, वो कार्मिक अकाउंट और भी डीप होता जा रहा है. The other option is, वो उन्होंने जो बोला वो उनका ओपिनियन है, मैं अपने आप को चेक कर लूं कि मैं वो कर रही हूं या नहीं, अगर मेरी गलती है तो चेंज, अगर नहीं है तो लेट देम गो, जस्ट लेट देम से व्हाट दे आर सेइंग एंड टेल योर सेल्फ इफ आई वॉन्ट आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, आई हैव द पावर, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग मी, आई एम डिस्टर्बिंग माई सेल्फ बाय व्हाट दे आर सेइंग टू मी. So if I can disturb myself, I can also stabilize myself. I am doing it.
By not ignoring them. You know what?
I mean not ignore them. No.
होता ये है, देखा ये गया है कि जब मुझे
विड्रॉ कर लेते
हैं, हाँ, तो मैं विड्रॉल में चले जाती हूँ कि मुझे रिएक्ट ही नहीं करना है, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है.
True.
ये भी एक तरीका है, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो
नहीं,
बिकॉज अगेन वो कुछ ना कुछ अकाउंट क्रिएट हो रहा है.
एब्सोल्युटली, हम दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ना, हम पॉजिटिव उनके लिए सोचे कि वो जो बोल रहे हैं वो अपनी पोजिशन में बैठ कर किसी एंगल से सही बोल रहे हैं. अगर वो मुझे अभी नहीं पहचान पा रहे हैं या मुझे नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी कर लेंगे. और नहीं भी अगर करते हैं, देन दैट्स ऑल्सो ओके, आई नो हु आई एम, दैट्स व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट,
आई नो अबाउट अगेन. यहाँ ये अगर इसको रिवर्स कर देते हैं, कई बार मुझे या मुझे कुछ लोग मिलते हैं जिनके जिनको लेके मैं अननेसेसरीली इरिटेट होती
हूँ. राइट,
यू नो, ये तो ये थे कि जो मुझे
इरिटेट करते हैं,
हम भी तो कितनी बार
इरिटेट करते
हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी वो कार्मिक अकाउंट होगा, उसको भी हैंडल करना.
राइट,
अननेसेसरली गुस्सा आ जाता है, अननेसेसरली इरिटेशन होती है, उसको भी हैंडल करना लोगों के लिए मुश्किल होता है. एक तो एहसास ही नहीं हो पाता, बट नाउ व्हेन वी स्टार्ट लिविंग विद अवेयरनेस, ये एहसास होने लगता है कि ये जबरदस्ती की कुछ एंगर है. तो उसको
मतलब
भी कैसे करें?
हर स्टेप पे अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं जितनी बार हो रही हूँ मैं अपनी भोगना को बढ़ा रही हूँ. सो स्टॉप, क्या मैं और कर्जा लेना चाहती हूँ, या जो पहले लिया हुआ कर्जा है उसको चुकतू करना चाहती हूँ? यू नो, अदरवाइज दिस इज जस्ट गोइंग टू गो ऑन एंड भोगना बढ़ती जाएगी. तो आप मेरे सामने आ रहे हैं, अगर 10 बार पहले आए थे और मैं इरिटेट हो रही थी, टुडे मॉर्निंग आई विल सिट इन मेडिटेशन एंड आई विल से व्हाट इज इट दैट इज इरिटेटिंग मी, कैन आई डू विदाउट इट, डू आई हैव एन ऑप्शन, एंड विजुअलाइज माई सेल्फ कि यू विल कम इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल रिमेन इन द अवेयरनेस, आई एम अ प्योर सोल एंड सो इज शी, वी हैव हैड सम एनर्जी एक्सचेंज, जिसकी वजह से वो इम्प्रेशन यहाँ है वो अभी भी ट्रिगर हो रहा है, बट फुल स्टॉप, नॉट फ्रॉम टुडे. इट्स जस्ट एन इंस्ट्रक्शन टू द माइंड. अभी तक वो इंस्ट्रक्शन दिया नहीं था, तो वो माइंड अपनी जो प्रीवियस थॉट्स है उसके हिसाब से चल रहा है. अब हम एक नया थॉट क्रिएट कर रहे हैं ना, वो थॉट को हम एक्शन में लाएंगे. तो मैं मॉर्निंग में एक थॉट क्रिएट करती हूँ कि आज जब आप मिलेंगे, आप चाहे कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगे. इट्स अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ. एंड फिर आप आते हैं, आई एम एबल टू रिमेम्बर दैट इंस्ट्रक्शन. तो वो थॉट एक्शन में आया कि मैं इरिटेट नहीं हुई, इम्प्रेशन बन गया. आई डिड नॉट गेट इरिटेटेड. फर्स्ट न्यू इम्प्रेशन. पहले बहुत सारे इम्प्रेशन थे कि आई गेट इरिटेटेड, डिड नॉट गेट इरिटेटेड. बहुत अच्छा लगा, लेस पेन. टुमारो अगेन, अगेन अनदर इम्प्रेशन, डिड नॉट गेट इरिटेटेड. दो और चार बार, उसके बाद आदत. उसके बाद आप कितनी बार भी आए दिन में, आई विल नॉट गेट इरिटेटेड.
ये इम्प्रेशन जो हैबिट बन जाए.
आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ फॉर दैट. इफ आई से नहीं वही इरिटेट कर रहे हैं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट.
नहीं, इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, यह हमें अपने बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, इतने कॉल्स, इतने फोन्स, इतने ईमेल्स हम तक पहुंच रहे हैं कि जो मेडिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट. दिस इज वन कॉन्सेप्ट जिसे हम लेकर चले थे कि कैसे मेडिटेट करेंगे. आई थिंक आई वांट टू शेयर इट नाउ टुडे. इज लाइक आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम.
राइट,
इट्स नो मोर अ मेडिटेशन. मतलब मैं सचमुच इस वक्त का इंतजार कर रही हूँ, कर रही होती हूँ हर रोज सुबह शाम या दिन में कभी भी, कि जब मैं अपने आप से रूबरू हो लेती हूँ, अपने आप से और परमात्मा के साथ, जो एक शिव बाबा के साथ एक रिलेशनशिप है. आई थिंक दैट्स अमेजिंग. और हर बार ये कर पाना, अब हर काम करना आसान लगने लग गया है. जो भी आप हमें बताती हैं कि किस तरह से करना है, मुझे लगता है हमारे दर्शक भी ये बात समझेंगे शायद, कि वो आसान हो जाता है.
जब अपने साथ और परमात्मा के साथ रिलेशनशिप अच्छा बन जाए, तो औरों के साथ ऑटोमेटिकली बन जाता है.
ब्यूटिफुल, दैट्स रियली ट्रू. सिस्टर शिवानी, हमने पिछली कड़ी में बात की कि लॉ ऑफ कर्मा जो है, जो कानून ऐसा है, जो जैसा बोया है वैसा हमें मिलता ही है. कुछ और भी ऐसे स्पिरिचुअल लॉज हैं जो काम करते हैं?
फंडामेंटल तो सारा कुछ कार्मिक फिलोसफी पे ही कनेक्टेड है, लेकिन इसको हम अलग अलग तरह से भी देख सकते हैं. जैसे एक कहेंगे कि लॉ ऑफ अटेंशन. ठीक है, व्हेरेवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज.
अच्छा, हमारा ध्यान जहां जाता है
एनर्जी फ्लोज. एंड व्हेरेवर माय एनर्जी फ्लोज दैट थिंग विल ग्रो.
ओके,
तो नाउ आई नीड टू कीप दिस इन माइंड कि जहां भी मेरा अटेंशन जाएगा, मेरी सारी एनर्जी उस तरफ चली जाएगी, और जिस तरफ मेरी एनर्जी जाएगी वो चीज ऑटोमेटिकली शक्तिशाली ग्रो होती जाएगी. स्थूल रूप से सिंपल देखें, गार्डन है, अगर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे तो आपकी सारा ध्यान, आपकी एनर्जी उसमें लगेगी, तो वो गार्डन बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा. आप एक कारोबार शुरू करते हैं, आप अपना ध्यान उस पर देंगे, वो कारोबार फलीभूत हो जाएगा. ये हुआ स्थूल रूप से. अब अगर थॉट लेवल पे भी, जिस थॉट की तरफ मेरी अटेंशन जाएगी, वो थॉट ऑटोमेटिकली और भी पावरफुल होती जाएगी. सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल कि किन थॉट्स पर अटेंशन देना है. जो हमने सोल कॉन्शियसनेस के दिन देखा कि बहुत सारी थॉट्स आती जाती है, जस्ट टेक वन एंड पुट ऑल योर अटेंशन ऑन दैट, जस्ट सी इट कि आई एम अ प्योर सोल. तो जब आप वो एक थॉट को लेकर उस पर अटेंशन देंगे, तो सारी एनर्जी उसमें जाएगी एंड सोल कॉन्शियसनेस ग्रोज. कीप योर अटेंशन टू गॉड, एनर्जी विल फ्लो इन टू दैट रिलेशनशिप, दैट रिलेशनशिप विल ग्रो. कोई भी रिलेशनशिप को भी अच्छा बनाने के लिए अटेंशन देना पड़ता है ना. आजकल हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, चाइल्ड क्या बोलते हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं हमारी तरफ. अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो रिश्ता
टूट रहा है.
सेम विद माई रिलेशनशिप विद माई सेल्फ एंड माई रिलेशनशिप विद गॉड. जितना हम उसको अटेंशन देंगे, हम कहें टाइम ही नहीं है, सारा दिन में टाइम नहीं है याद करने के लिए या सोल कॉन्शियस का ध्यान रखने के लिए, देन इट विल नॉट ग्रो. हम अगर हमारा ध्यान सारा उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नाउ ऑल आर अटेंशन गोज टू दीज थॉट्स, एनर्जी फ्लोज, दोज थिंग्स ग्रो, दैट प्रॉब्लम बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर. तो इनफैक्ट जो इस तरह की नेगेटिव चीजें हैं, वहां से अटेंशन को हटा लीजिए.
अगेन
यू विल बी विड्रॉइंग एनर्जी फ्रॉम
डेस्टिनी. मैं खुद लिख सकती हूँ अपनी, यू नो, बात वही आ गई कि लॉ, अगर अटेंशन की बात करते हैं तो जो ध्यान प्रायोरिटाइज करके जिस बात पे मैं ध्यान दे रही हूँ, वाह, दैट्स नाइस.
जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर ध्यान नहीं दो, आपकी एनर्जी वहां से विड्रॉ हो जाएगी. और उस चीज पर ध्यान दे दीजिए जो आपके कंट्रोल में है, दैट थिंग विल ग्रो, वो चीज अपने आप सेट हो जाएगी. तो लॉ ऑफ अटेंशन पे भी अगर हम ध्यान रखें तो विल बी वेरी केयरफुल कि किन एस्पेक्ट्स पे, किन बातों पे, किन थॉट्स पे अटेंशन देना चाहिए और किन पर नहीं देना चाहिए. बिकॉज क्योंकि लोग कई बार कहते हैं हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं. सो दे हैव टू रिमेम्बर कि जितना वो सोच रहे हैं दे आर पुटिंग एनर्जी इन टू दैट थॉट एंड दैट थॉट विल ग्रो. एंड फिर जो हम कहते हैं कि राई से
पहाड़
बना लिया, एंड शिव बाबा अगर हमको सिखाते हैं पहाड़ को
राई बना लो, बहुत सुंदर.
और राई को भी कहते हैं रुई बना लो, क्योंकि राई भी बाबा कहते हैं हार्ड है, रुई सॉफ्ट होती है, ब्लो एंड
फ्लो. फ्लो दैट्स रियली नाइस. इनफैक्ट ये पूरा थॉट ही कितना खूबसूरत है कि ऐसा लगता है कि आपका एक भार उतर गया. एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल जो है आकर्षण का जो एक कानून है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है वो जी जान से वो आप तक पहुंचाने की बात करती है. ये कितना काम करता है?
ये 110% इट वर्क्स. कि आप कोई एक थॉट ले लीजिए, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, तो इसीलिए वो बहुत क्रिटिकल है. लेकिन हम पॉजिटिव करें कि अगर आप एक पॉजिटिव थॉट ले लीजिए एंड यू होल्ड ऑन टू दैट थॉट, एब्सोल्युटली यू होल्ड ऑन टू दैट थॉट, सारे लोग, सारी सिचुएशंस, सारी परिस्थितियां चेंज होती जाएंगी एंड दे विल, यू नो, ऑल राइट वंस विल गेट अट्रैक्टेड टू यू. दैट्स वेयर डेस्टिनी गेट्स क्रिएटेड ना. एज माय थॉट सो विल बी माय डेस्टिनी. क्योंकि जैसे मेरी थॉट, सारे लोग, सारी परिस्थिति सब बदलती जाएगी उसके अनुसार. तो इसलिए पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव पीपल विल गेट अट्रैक्टेड. ऑपोजिट तो ऑपोजिट. अब क्या हो रहा है, हम वो थॉट पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. सो वी क्रिएट अ नेगेटिव थॉट एंड वी होल्ड ऑन टू इट.
इन फैक्ट वी कीप ऑन डाउटिंग.
दैट्स द बिगेस्ट थिंग. आई ऑलवेज शेयर विद अ लॉट ऑफ पीपल कि व्हाई डू यू डाउट. क्योंकि आपके डाउट करने से सामने वाली आत्मा के अंदर वो थॉट क्रिएट होता जा रहा है. आप ट्रस्ट नहीं कर रहे. एंड यही अगर आप ट्रस्ट कर लें तो सामने वाली आत्मा के अंदर ट्रस्ट, बिकॉज दैट इज वॉट इज गोइंग टू फ्लो टूवर्ड्स यू. तो जैसे लोग कहते हैं ना हमारा विजन, हमारा गोल, तो एक विजन क्रिएट कीजिए एंड होल्ड ऑन टू इट. लेकिन उसके अंदर फिर कोई डाउट नहीं आना चाहिए. यू नो, कई बार कहते हैं हाँ मुझे ये बनना है लेकिन बहुत मुश्किल है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, देन इट विल नॉट हैपन.
अच्छा, एक और जो बात कही जा रही है कि आप कॉस्मोस में ऑर्डर प्लेस कीजिए.
हाँ,
यू नो, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में करते हैं, बी श्योर कि वो आएगा.
दैट इज व्हाट दिस, दैट इज व्हाट इट इज. तो कॉस्मोस में ऑर्डर प्लेस करें मतलब व्हाट?
हियर थॉट क्रिएट कीजिए.
वो कहते हैं ना सारा कुछ चेंज हो जाएगा आपकी वो थॉट को रियलिटी बनाने में, बिकॉज दैट्स द पावर ऑफ द माइंड. बट वी क्रिएट अ नेगेटिव थॉट तो सारा कुछ चेंज हो जाता है उसको रियलिटी बनाने में.
अच्छा, इनफैक्ट हम उसे टाइम फैक्टर में भी कभी बांध देते हैं.
हाँ,
यहाँ तक हो जाना चाहिए.
राइट,
तो वो हमें एक इंडिपेंडेंट,
वो भी डाउट हो जाता है ना कि एक महीने से मैंने ये सोचा था नहीं हुआ, तो वो भी तो नहीं. आप एक थॉट क्रिएट कीजिए and if you want to set a time factor to it, तो वो time factor में भी आप firmly believe करते हो
कि मेरे को महीने में ही हो जाएगा.
हो जाएगा, absolutely. तो वो हो जाएगा. And impossible things happen. Mind इतनी powerful शक्ति है कि उसी से तो सारी शक्तियां चल रही हैं. इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की थॉट क्रिएट
और किस तरह की डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं. एक्चुअली ये बहुत
मायने, वो रियलिटी बनता जाएगा. तो नेगेटिव थॉट्स को जितना हो सके,
और कहीं अनजाने में हम कुछ ऐसा मांग लें जो कहीं बाकी सारी चीजों के लिए गलत हो जाए.
हाँ, एब्सोल्युटली. तो दैट्स व्हाई एवरी थॉट इज वेरी क्रिटिकल. बहुत ध्यान से अपने संकल्पों को क्रिएट करना चाहिए और उसमें मेडिटेशन हेल्प करता. यू नो, राइट एंड रॉन्ग थॉट्स, एंड कहीं अगर वो गलत अनकंफर्टेबल थॉट्स आ भी रहे हैं, स्टॉप, एक मिनट स्टॉप, अपने माइंड को बताएं नॉट नीडेड, आउट, दैट्स ऑल. एक बार आएगा, दो बार आएगा, चार बार आएगा, इट विल गेट ओवर. लेकिन अगर उसको रुकने के लिए नहीं बोलेंगे
तो बहुत अच्छा है और वो फिर बिल्डअप हो जाए. आई एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ.
अटेंशन गोज,
यू नो व्हेन यू सेड कि आप एक थॉट क्रिएट करते हैं, एक इमेज आती है, तो जब तक वो इमेज ना आए तब तक आप इंतजार कीजिए. एक्चुअली इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन आई वाज स्टार्टेड मेडिटेशन लाइक दिस थिंग हैपन कि वो अगर आप लाइट को देख रहे हैं वो इमेज नहीं आती है, कोई ना कोई इमेज आती है, आप उसके पीछे भाग गए, बट देन यू ब्रिंग इट बैक.
सो दैट्स द डिसिप्लिनिंग ना. और ये कॉन्सेंट्रेशन है. एक और जो लॉ बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है और जो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, दैट्स लॉ ऑफ बिलीफ. ओके, व्हाट एवर यू बिलीव विद फीलिंग विल ऑटोमेटिकली हैपन. व्हाट एवर यू बिलीव विद फीलिंग विल ऑटोमेटिकली हैपन. जो आप फीलिंग क्रिएट करते हैं वैसा ही आपके साथ होता जाएगा. और इसमें भी हमारे अलग अलग प्रकार के बिलीव्स होते हैं. कई होते हैं बहुत फेटल, खतरनाक बिलीव्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत तकलीफ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं स्टेज पर नहीं बोल सकती हूँ, मैं इनके सामने ये नहीं कर सकती हूँ, गर्ल्स शुड नॉट क्लाइंब ट्रीज, यू नो दीज ओल्ड बिलीव्स. सो व्हाट हैपेंड, गर्ल्स डिडंट क्लाइंब ट्रीज फॉर सो लॉन्ग. तो ये जो फेटल बिलीव्स है ना, ये हमें ग्रो नहीं होने देते. तो जो हम बिलीव करेंगे वो ही होता जाएगा हमारे साथ. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अपने बारे में कैसे बिलीव्स बनाते हैं. हमें बाइंड नहीं करना चाहिए अपने आप को इस तरह की चीजों में कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा. दूसरा है सर्वाइवल बिलीव्स.
मैं सर्वाइव, आई विल सर्वाइव,
जितना है अभी कर लो, इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकेंगे. तो ये जो बिलीफ एक बन गया है, उसकी वजह से हम जो सारी ये भाग दौड़, एक दूसरे को नीचे खींचते ना, बिकॉज हमने समझा कि उनको अगर मिल गया तो मेरे को नहीं मिल सकता, यू नो, एंड इतना ही अमाउंट अवेलेबल है सिर्फ, तो इधर दे गेट इट और आई गेट इट. तो हम सब एक जैसे एक दूसरे को गिरा के नीचे खींच के वो प्राप्त करने में लग गए. तो ये बिलीफ सिस्टम ने भी हमारी पूरी यू नो वे ऑफ वर्किंग को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया.
और इतने कॉन्फिडेंस से कहा जाता है आजकल कि बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन अब है तो क्या कर सकते हैं. पर ये भी हम एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं कि ये है,
राइट,
दिस इज ऑल्सो बिलीफ,
दिस इज अ बिलीफ ना, दिस इज अ बिलीफ कि ये कॉम्पिटिशन है, ये कोऑपरेशन नहीं है, हम कट्ठे मिलकर काम नहीं कर सकते, या तो वो जीतेंगे या मैं जीतूंगा.
लड़ाई है, कंटिन्यूस लड़ाई,
कंटिन्यूस वो है. कट्ठे मिलकर काम करेंगे और ज्यादा अच्छा कुछ कर पाएंगे, नो, इट्स ईदर हिम और मी. तो इसलिए वो कंपटीशन वो चलता रहता
है. तो कई सारे लॉज जो है वो
नहीं, और ये बिलीव्स में भी एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ब्लॉक करने वाला बिलीफ, जो मैं दूसरों के प्रति क्रिएट कर देती हूँ. ये ऐसे ही है,
फिनिश्ड,
देन आई विल नॉट चेंज माई एटीट्यूड towards you. तो उससे क्या होता है, मेरी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी जो आपकी तरफ जाती है. तो कभी भी किसी को लेबल्स नहीं दे हम, ये तो है ही गुस्से वाले, ये तो है ही ऐसे, यू नो एवरी वन इज चेंजिंग.
मार्जिन नहीं छोड़ते, यू नो, कि वो चेंज हो सकता है.
हमने एक उनको टाइटल दे दिया कि ये है ही ऐसे, तो जैसे ही वो हमारे सामने आएंगे वी विल फील लाइक दैट अबाउट देम. सो दैट एनर्जी which should be of a better quality, it will not go because my that belief will create that energy. And what I could change it to, empowering belief. Pehle ho raha tha ki main nahi kar sakta, main kar sakta hu. Shaktishali belief system apna banaye, main kar sakta hu, kyun nahi kar sakta, main inke sath apne relation change kar sakta hu. So that belief, everything.
Again, कितने सारे बिलीव हम साथ साथ लेके चलते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता,
absolutely.
सारी खुशियां नहीं मिल सकती,
नहीं मिल सकती,
ऐसा होता है,
इज ऑल ब्लॉकिंग बिलीव. तो इसकी वजह से वो नहीं मिलती है, क्योंकि जैसा आप बिलीव करते जाएंगे वैसा ही आपके साथ होता जाएगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आर द ट्रू बिलीव. मैं आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर सोल, ये भी एक बिलीव है. इसको एक्सपेरिमेंट करें, जब ये आपके लिए वर्क कर जाता है, इट्स अ ट्रू बिलीफ, इट्स द ट्रूथ फॉर यू. अगर वो ट्रूथ नहीं आप फील करते हैं तो ईदर इट वॉज नॉट राइट और देन आई डिडंट डू इट द राइट वे, मैंने उस राह पर ठीक से चल कर नहीं देखा, या वो रास्ता ही ठीक नहीं था. लेकिन हर अपने बिलीफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए टिल इट बिकम्स द ट्रूथ. तो अपने बिलीव्स को बहुत ध्यान से, बिकॉज दिस इज ऑल्सो लॉज, सारा दिन जो वर्क कर रहे हैं हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है. इट्स बिकॉज मैंने वो बिलीफ होल्ड किया हुआ है, मैंने वो थॉट क्रिएट की हुई है, मैंने वो थॉट को अटेंशन दी हुई है, तो दैट विल बी माई रिजल्ट. इट्स ऑल सेम विद कार्मिक फिलोसफी, लेकिन धीरे अलग अलग अगर ध्यान दें तो वी अंडरस्टैंड कि हर चीज जो हमारी तरफ आ रही है,
ये लॉ ऑफ कर्मा के हिस्सा बन जाते हैं एक्चुअली अगर हम तोड़ने में आए तो लॉ ऑफ अटेंशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ बिलीफ की बात, सारे बिलीफ वही आ जाते हैं इनफैक्ट। और अगर हम पीछे मुड़कर देखें जो हमने सफर जब शुरू किया था तो आपने यही कहा था कि हमारा थॉट जो क्रिएट होता है वो बिलीफ से होता है, उसमें तीन चीजों से हो रहा था जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे थे, बिलीफ था, सो बिलीफ एक्चुअली बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट
एंड नाउ सोल कॉन्शियसनेस इज दैट बेसिक बिलीफ सिस्टम जो हमें करेक्ट करना है कि आई एम अ बॉडी तो ओ मैं मरने वाली हूँ, मैं एक दिन मर जाऊंगी, ये सब कुछ मेरे से चला जाएगा, जितना है अभी इकट्ठा कर लो। तो होल्ड किया, नहीं मिल रहा था, गुस्सा आना शुरू किया, किसी ने छीनने लगे तो डर लगा, औरों से छीनने लगे तो ग्रीड, कहीं चला ना जाए अटैचमेंट, फियर, सो ऑल दीज वाइसेस केम इन विद वन बिलीफ सिस्टम दैट आई एम अ बॉडी।
इन फैक्ट बट लेकिन इट्स अमेजिंग यू नो जितने लोगों के साथ जब भी मेरी बातचीत हुई है अब लाइक व्हेन वी से जैसे कि पर ये बॉडी नहीं हूं मैं ये कैसे मैं मान लूं, बट द मोमेंट वी से माय बॉडी यू नो लाइक दैट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वर्क्ड यू नो बिकॉज द माइंडसेट एक चेंज होते हैं। सो शिवानी यहां एक और बिलीफ सिस्टम है या एक और बात जो कहीं ना कहीं मुझे खटकती रही है, वो मेरा सवाल अपना पर्सनली हो जाता है कि जब हम ये कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूं जो भी मैंने किया है या जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मैं करके भी आई हूं या इस जन्म में भी जो मैंने किया है इस बर्थ में भी, तो क्या जब मैं कहीं ये कहा जाता है कि मैं वहां जाकर सारे पाप धो सकती हूं, मैं मतलब कई बार मुझे एक क्वेश्चन होता है कि मैं सारी जिंदगी गलत करती रहूंगी फिर मैं वहां जाकर अपने सारे पाप धो लूंगी, तो इसका मतलब मैं मुझे परमिशन है कि मैं सब कुछ, दिस इज माई क्वेश्चन।
अगर आप किसी का मर्डर करते हैं और मर्डर करने के बाद आप उस चाकू को धो देते हैं तो क्या पाप खत्म हो गया?
डेफिनेटली।
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो चाकू एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया गया था, तो पनिशमेंट चाकू को नहीं मिलती है, तो ना चाकू धोने से पाप धुलने वाले हैं। इसी तरह जो हाथ है जिसने उस चाकू को पकड़ा हुआ था, इसको भी तो आप नल के नीचे धो देते हैं, खून उतर जाता है, पाप धुल गया?
नहीं,
क्योंकि ये भी उतना ही इंस्ट्रूमेंट है जितना इसके हाथ यू नो इसमें जो पकड़ा हुआ चाकू था। लेकिन हमने अभी तक क्या समझ लिया था, चाकू इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी कोई गलती नहीं, बाकी पाप इसने किया, इसने तो नहीं किया, इसको कोई नॉलेज नहीं।
लेकिन यहाँ
हम धो इसको देते
जाते हैं लोग,
लेकिन वो इसको देते।
यहाँ ये सवाल मेरा ये है कि मैं मान रही हूँ यू नो कि जो पाप है उसको ना धोने से ना किसी से जाने
नहीं
सकता।
शरीर को धोने से नहीं करेगा, क्योंकि पाप करने वाला या पुण्य करने वाला शरीर नहीं है। आई द सोल एक्ट थ्रू द बॉडी, तो किसी को सुख दिया किसी को दुख दिया, मैं आत्मा कर रही हूँ, ये मुख नहीं कर रहा, ये हाथ नहीं कर रहे, ये पाँव नहीं कर रहे, पर हम धो सिर्फ इनको रहे। यू नो जो भावना थी, देखो अगेन इट्स बॉडी कॉन्शियसनेस, भावना बहुत अच्छी है लेकिन उस कॉन्शियसनेस से जाना पड़ेगा आपको। जब आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, कॉन्शियसनेस ये होनी चाहिए कि मुझ आत्मा ने ये विकर्म किए हैं, मुझ आत्मा को परमात्मा को याद करके अपने संस्कारों को धोना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है, तब वो पाप धुल रहे हैं। मैं अपनी वही ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में जाऊं और सिर्फ शरीर को वहां तक ले जाऊं और शरीर वापस आ जाए, तो वो तो सिर्फ शरीर धुला, वो तो रोज ही धुलता है। यू नो भले वो बहुत ही पवित्र जल में धुला, लेकिन फिर भी शरीर धुला, लेकिन उसने पाप नहीं किया था। तो कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, वो संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो हम कहते हैं कि ज्ञान गंगा स्नान, कि ज्ञान की एक एक बूंद जब इस आत्मा पर गिरेगी और इससे वो जो पुराने इंप्रेशन है उसको वो धोती जाएगी और नए इंप्रेशन बनते जाएंगे, तब पाप धुलते जाते हैं। स्थूल धुलाई से सिर्फ नहीं हो पाएगा।
यहाँ एक छोटी सी बात मैं जानना चाहूंगी कि गहरी आस्था से जब लोग जाते हैं, जब ये मान के जाते हैं कि मैं वहां जा रहा हूँ या जा रही हूँ और अपने सारे पाप धो के आऊंगी, अपने कर्मों की माफी मांग के भी आएंगे या जो करके आएंगे, डज इट वर्क?
सी अगेन इट वर्क्स इफ यू वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। यू नो लेट्स से कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, तो मैंने बहुत पाप किए होंगे इस पूरे साल के अंदर, मैंने अनेक आत्माओं को दुख दिया होगा और वो सारा अक्यूमुलेट हो गया है। अब मैं जा रही हूँ स्थान पर ये सोच के कि ये सारे धुल जाने चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये होगा कि फिर आने के बाद मुझे अंदर एक अंश भी क्रोध का नहीं रहना चाहिए, तब तो मैं आगे अक्यूमुलेट नहीं करूँ ना, तब कहेंगे सही मायने में कि कुछ धुलाई हो गई। लेकिन गए बहुत अच्छी आस्था के साथ, रियली बहुत अच्छी फीलिंग के साथ जाते हैं, लेकिन आने के बाद क्या किया?
आने के बाद तो फिर वही वैसा का वैसा,
तो देन फिर कैसे हम कह सकते हैं ना कि रियली वो उतने स्ट्रांग उसके साथ गए थे? पश्चाताप मतलब परिवर्तन. पश्चाताप मतलब नहीं कि हाय मैंने क्या किया और फिर वही किया. शिव बाबा निराकार परमात्मा हमें बताते हैं पुरुषार्थ. मतलब एफर्ट मतलब ये कि एक बार की हुई गलती दूसरी बार नहीं होनी चाहिए,
रिपीट नहीं होनी चाहिए.
क्योंकि हम लोग कई बार कहते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, हो जाएगा हो जाएगा. तो शिव बाबा से कब कब होगा, मतलब आप वही गलती करते रहेंगे और कहेंगे ये पुरुषार्थ चल रहा है, हो जाएगा. सिर्फ पुरुषार्थ का भी मतलब है एक बार की हुई गलती फिर नहीं होगी. देन इट इज सही मायने में वो हिसाब किताब को फिनिश करना.
सचिन तिवारी, बहुत सी अभी बातें बाकी हैं, लेकिन वक्त है कि अब हम आगे बढ़े. लेकिन चलते चलते बहुत से लोगों के सवाल है. एक छोटा सा ही सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोग इनफैक्ट ये भी समझने लगे हैं कि शायद मैं भी बता रही हूँ ये बात, लोग जब मुझसे बात करते हैं कि इतनी क्लैरिटी से कैसे ये हो गया है. सदियों से हम सुनते आ रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि ये जो बातचीत है ये हमें समझ में आ रही है? अभी तक हमें समझ क्यों नहीं आ रही थी? क्या है ऐसी बात, क्या है ऐसा इस ज्ञान में जो मुझे इतना क्लियर, इनफैक्ट मुझे भी और बहुत से हमारे दर्शक हैं तो वो यही जानना चाहते हैं. मुझसे भी बहुत बार पूछते हैं कि आपको ये आता है, आपको पता है पहले? तो मैं उन्हें ये बार बार कहती हूँ कि मुझे नहीं पता था बट मुझे क्लैरिटी है. ऐसा कैसे है?
जैसे आपको नहीं पता था ना, सुनने सुनते आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा और फिर आपने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया. ऐसे ही हम में से किसी को भी नहीं पता था, ये हम में से किसी को भी नहीं आता था. मैं मतलब इंडिविजुअली अपने लिए कह सकती हूँ कि वही पुराने संस्कार, वही गुस्सा, वही चिड़चिड़ापन. लेकिन जब निराकार परमात्मा ने स्वयं आकर ये ज्ञान दिया है, अभी तक क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि हमें ज्ञान आत्माएं दे रही थी, जो हमने पहले भी देखा कि कोई गलत नहीं था. लेकिन हर आत्मा ने शरीर लेने के कारण परसेप्शंस में बहुत सारी वेरिएशन आती है. जो इस बॉन्डेज से ऊपर होगा वो पूरी पिक्चर को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, और इस बॉन्डेज से ऊपर सिर्फ एक निराकार परमात्मा है. तो जब निराकार परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जब वो स्वयं आकर ये ज्ञान देते हैं, सुप्रीम टीचर है, क्योंकि नॉलेज तो बहुत सिंपल है, मैं कौन हूँ वो कौन है, जिसको राइट नॉलेज है जब वो आकर देते हैं तो इट्स वेरी सिंपल. एंड फिर वो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके साथ, हमें समझ में आने लगता है, वी गेट द रिजल्ट इन आवर लाइफ, एंड दैट्स हाउ वी ओनली बिकम एन इंस्ट्रूमेंट. अभी भी वी आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट हु इज सिटिंग हियर. ज्ञान सारा उसका है, वी आर इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट टू शेयर इट विद एवरीबॉडी.
दैट्स ग्रेट एक्चुअली, बिकॉज वही क्लैरिटी जो है वो समझ में आ रही
है. अभी तक जितने भी हम संस्थाओं में गए, जहां भी गए, आत्माएं ज्ञान दे रही थी. महान आत्माएं, संत आत्माएं, वेरी प्योर सोल्स, धर्म आत्माएं, लेकिन परमात्मा डायरेक्ट ज्ञान देते हैं.
बिल्कुल, और वो ज्ञान तभी इतनी क्लैरिटी के साथ हमारे साथ है. सुषमा शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
ओम शांति.
ओम शांति. ये बात तो सामने आती है कि क्यों ये ज्ञान जो है वो इतना क्लैरिटी से हमें समझ में आ रहा है. ये बात जो छोटी सी बात थी, कब से सुनते आ रहे थे, लेकिन आज समझ आ रही है और फिर अनुभव भी कर पा रहे हैं. लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जो परेशान करती है. अगर आज की इस कड़ी को देखें तो हमने ये जाना कि कई तरह के कार्मिक लॉ में कई तरह के और कानून हैं, कई लॉज हैं जो कितनी स्ट्रांगली, कितनी शिद्दत से काम करते हैं. तो हमारा हर थॉट, हर बिलीफ बहुत सोचा समझा होना चाहिए अगर आगे की जिंदगी को हम बेहतर बनाना चाहते हैं. आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अभी जो बात हमारे दिल में चल रही है वो ये है कि आज के इस दौर में ऐसा क्या हो गया है कि हर आत्मा, हर इंसान इतना परेशान नजर आता है. और सिर्फ बड़ा व्यक्ति नहीं, बच्चों से ये शुरुआत नजर आती है. क्या हो चुका है ऐसा कि आज हमें बच्चा बच्चा दुखी और बोझ से दबा दिखता है?